स्वर्ग में प्रभु का जीवे वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए श्रोता, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हो, प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है। मित्रों, इस पुस्तक में हम सब देख रहे थे कि परमेश्वर के दूतों ने 7 कटोरे उंडेले और पिछले अध्ययन में हम सब 7वें स्वर्गदूत के पास से 7वें कटोरे के उंडेले जाने के बारे देख रहे थे। मेरे मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ें। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सिंह थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है कि तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया। याद रखें कि पतमुस के द्वीप पर था कौन? यूहन्ना। वह महिमा निमित्त मसीह और कलीसिया के लिए संदेश ग्रहण करने के लिए आत्मा से भरा हुआ था। पहले वह स्वर्ग में उठाया गया था, तदुपरांत दृश्य पृथ्वी की ओर हो जाता है। यहां फिर कहा गया है कि यूहन्ना आत्मा में है। क्या उसे यह दर्शन देखने के लिए नए सिरे से आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता थी? मैं तो ऐसा ही सोचता हूं। क्या यह जंगल यथार्थ में जंगल था? स्मरण रखें कि इस अध्याय में व्यक्त दर्शन प्रतीकात्मक हैं। बेबीलोन और रोम दोनों के ही परिवेश में जंगल थे। यह लिखित इतिहास का विषय है। बेबीलोन को एक निर्जन स्थान बनाना था और यूं कहें कि बनना था। इस संदर्भ में यशायाह नबी की पुस्तक उसके 47 और 48 अध्याय में और तब यिर्मयाह नबी की पुस्तक 50 से 51 अध्याय में हम पढ़ते हैं। मेरे विचार में यह जंगल वास्तविक जंगल है, परंतु यह संसार की अव्यवस्था का भी प्रतीक है जो बेबीलोन के धर्म तंत्र द्वारा लाई गई है। यूहन्ना ने देखा कि एक स्त्री लाल रंग के पशु पर बैठी है। यह एक भयानक दृश्य है। यह स्त्री रोम नगर है जहां उस समय तक संसार के सब धर्म होंगे। वह धर्म की राजधानी होगा। इस समय सब विश्वासी स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। मैंने देखा है कि कैथोलिक कलीसिया में भी अनेक विश्वासी हैं, मुक्त विचारक विश्वासियों में भी और विचित्र धर्मों में भी अनेक विश्वासी हैं। ये सब विश्वासी स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। यह सांसारिक कलीसिया पूर्ण रूपेण विधर्मी होगी। यह धर्म तंत्र जिसका प्रतीक दिया गया है रोमी साम्राज्य पर सवार प्रभुता करता है, जो महाक्लेश के आरंभ की घटना है। आगे लिखा है कि निंदा के नामों से भरा हुआ था। इससे प्रकट होता है कि धर्म जीवित प्रभु यीशु से कितना दूर जा चुका होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय उसके 4 और 5 पद में आगे हम पढ़ते हैं, यह स्त्री बैजने और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। लिखा है बैजनी और लाल रंग के कपड़े। बैजनी रंग रोम का राजसी रंग था। उनके अधिकारी बैजनी धारियों के वस्त्र धारण करते थे। राजा का बागा बैजनी वस्त्र होता था। लाल रंग रोम के कैथलिक कलिसिया ने अपनाया था। सोने से सजी हुई थी। इसका मतलब क्या है? यह उसके बाहरी दिखावे की सुंदरता है, परंतु फरीसियों के समान वह भीतर से मृतकों की हड्डियों तथा वस्तुओं से भरी हुई थी। कहता है बहुमूल्य मणियों और मोतियों, ये ठंडे पत्थर होते थे। यद्यपि वे वास्तविक हैं और सच्चे हार्दिक धर्म की घृणित नकल थी। प्रभु यीशु ने फरीसियों से कहा था मत्तीरची सुसमाचार 23 अध्याय उसके 25 पद में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। यहां पर कहता है कि एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार के अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। यह कलीसिया विरोधी समूह का नशा था। झूठा धर्म, नकली मसीही विश्वास, झूठा सुसमाचार तथा स्वांग एवं झूठ से भरा धर्म, यही वह कटोरा है जिसे पीकर संसार मतवाला हो जाता है। यर्मिया नबी की पुस्तक 51 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। तब आगे लिखा है कि उसके माथे पर यह नाम लिखा था। यह उस स्त्री के आश्चर्यजनक गुणों का प्रकाशन प्रदान करता है। वह मुकुट धारण करने की अपेक्षा अपना अंगीकार प्रकट करती है। जी हां, यह कलीसिया के लिए एक लज्जा का नाम है, जबकि कलीसिया को तो मसीह के लिए एक दुल्हन होना है। लिखा है भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता है। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि हम परिवर्तनशील नैतिकता के युग में वास करते हैं। मैं पुराने विचारों का हूं और कई बार नए विचार के साथ सहमत भी होना पड़ता है, और अब भी यही मानता हूं कि परमेश्वर का वचन अपनी मान्यताओं में आज भी सही है। मेरे विचार में संसार की सर्वोत्तम रचना एक स्त्री है। परमेश्वर ने उसे बनाया ही ऐसा है। विवाह करके वह पुरुष के साथ एक ऐसे संबंध में आती है जिसके द्वारा वह उसे अंतरिक्ष में पहुंचा देती है। मेरा मानना तो यह है कि आज की हमारी सभ्यता ने स्त्री को स्वतंत्रता दिलाने की अपेक्षा उसे यौनाचार का प्रतीक बना दिया है, जो उसके लिए दासत्व ही है। पुरुष को ऊंचा उठाने के स्थान पर उसे पुरुष के पतन का कारण बताया जाता है। स्त्री का सबसे पतित रूप है एक वेश्या। आपको यह अच्छा तो नहीं लगेगा, परंतु परमेश्वर का वचन यही कहता है, भेद बड़ा बेबीलोन। कलीसिया एक भेद है, क्योंकि वह पुराने नियम में प्रकट नहीं थी। आप देखें इफिसियों के पत्री 3 अध्याय उसके 1-9 पद में। परंतु यहां यह नकली कलीसिया भेद इसलिए है कि यह यूहन्ना द्वारा अध्याय 17 में व्यक्त किए जाने से पूर्व प्रकट नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, स्वर्ग में उठाए जाने के समय ढोंगी विश्वासी महाक्लेश में प्रवेश करते हैं। यह यहां रही हुई कलीसिया है जिसे वेश्या कहा गया है। दूसरा थिस्लोनिकियों की पत्री 2 अध्याय के 7 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। यह कलीसिया सच्ची कलीसिया की शिक्षाओं की विपरीत शिक्षा देगी। सच्ची कलीसिया मसीह की दुल्हन है और वह अपराध के भेद की पूर्ति है। कहता है भेद बड़ा बेबीलोन। जी हां, भेद बड़ा बेबीलोन भी वैसा ही नाम है जैसा यरूशलेम को सदोम कहा गया है। बेबीलोन सब झूठे धर्मों का स्रोत है। यही कारण है कि उसे पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता कहा गया है। यह धर्मशास्त्र द्वारा भयानक एवं घृणित पाप का सबसे अधिक जीवित उदाहरण है। मेरे प्रियो, आप निश्चय जानिए कि यौनाचार और झूठे धर्म परस्पर संबंधित हैं। मेरा मानना है कि अधिकांश युवा दंपति जब परमेश्वर के समक्ष एक दूसरे को विवाह के लिए सुरक्षित रखी अपनी देह समर्पित नहीं करते, तब वे विवाह में इस सौभाग्य से चूक जाते हैं। यह परमेश्वर की व्यवस्था भी और आज भी है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि यह भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं की माता कही गई है। आज कलीसिया में बहुत समस्याएं हैं और मेरे विचार में उन्होंने मनुष्यों में मनोवैज्ञानिक अंतर को देखा है और सबके व्यवहार योग्य मसीही शिक्षाओं तथा अभ्यासों को साधना असंभव है। अतः उस महान वैश्विक कलीसिया में आने वाले वर्ग अपने अपने अभ्यासों को मानेंगे, जैसे डूब का बपतिस्मा, छिड़काव का बपतिस्मा और इस प्रकार की कई प्रथाओं का वे पालन करेंगे और लोगों को जबरदस्त उस पर दबाव देंगे। वह प्रथाओं का पालन करेगा, जिसे प्रथाएं नहीं चाहिए वे प्रथाओं का पालन नहीं करेंगे। अतः वेश्या की माता से भी बढ़कर और कुछ होगा। उस समय कलीसिया वेश्याओं से भरी होगी, वह पूरी की पूरी वेश्यालय होगी। मेरे प्रियो, यह हमारे लिए कितनी दुखद बात है। आगे हम देखते हैं कि इसके बाद उसने क्या देखा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा हुआ है, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सिंह हैं, तुझे भेद बताता हूं। लिखा है, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू पीने से मतवाली देखा। यह वेश्या अन्यों को ही नशा नहीं कराती, वह स्वयं भी अपने सताव के कारण नशे में रहती है। यह सच है कि कलीसिया महाक्लेश से नहीं जाएगी, परंतु ज्यों ज्यों हम अनुग्रह के युग के अंत के निकट पहुंचते हैं, त्यों त्यों विश्वासियों को क्लेश की अपेक्षा करना होगा। यह मेरा ही नहीं, अनेक मसीही अगुओं का भी अनुभव है कि परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु की बातों के लिए खड़ा होना अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है। लिखा है, पवित्र जनों से संभवतः अभिप्राय है पुराने नियम के भक्त जन और नए नियम के मसीही शहीद। इससे एक संकेत यह भी मिलता है कि बेबीलोन कैथोलिक कलीसिया से परे कुछ है। इसकी अपेक्षा यह सब धर्मों का मिश्रण है। सच्चे विश्वासी तो सब उठा लिए गए हैं और बेबीलोन बचे हुए ढोंगे विश्वासी है। मेरे मित्रों, बेबीलोन एक संयोजित धर्म तंत्र है जिसमें प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक एवं अन्य पंथ तथा वे सब हैं जो विश्वासियों के उठाए जाते समय पृथ्वी पर रह गए थे। यह एक अव्यवस्था का मेल है जो सब प्रकार के धार्मिक भ्रम और मूर्ति पूजा का शिखर है। पुराने नियम में बेबीलोन परमेश्वर की प्रजा को सताने वाला और परमेश्वर का विरोधी था। बेबीलोन के राजा ही ने उन तीनों इब्रानियों को आग की भट्टी में डाल दिया था क्योंकि उन्होंने मूर्ति की पूजा नहीं की थी। उस स्त्री का दर्शन देखकर यूहन्ना कहता है कि वह अति आश्चर्यचकित हुआ। पहली बार हम देखते हैं कि यूहन्ना उलझन में है। हम तो पहले भी उलझन में पड़े थे, परंतु इस बार यूहन्ना स्वयं उलझन में पड़ गया है। स्वर्गदूत उससे कहता है कि उस स्त्री का भेद प्रकट करने के लिए वह है, तो फिर यूहन्ना को परेशान होने की क्या आवश्यकता है। यहां पशु के रोमी साम्राज्य के पक्ष पर बल दिया गया है, अपेक्षा इसके कि उसके ख्रिस्त विरोधी स्वभाव पर बल दिया जाए। हमें ध्यान देना है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय उसके 8 से 10 पद में आगे लिखा हुआ है, जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं हैं, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे सातों सिर सात पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है। वे सात राजा भी हैं, पांच तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। मेरे प्रियो, यहां भूतकाल के प्रयोग का उद्देश्य है कि रोमी साम्राज्य के इतिहास पर ध्यान आकर्षित करवाना, और फिर वर्तमान काल के उपयोग का अभिप्राय है उस विभाजित राज्य की वर्तमान दशा को देखना। रोमी साम्राज्य समाप्त नहीं हुआ है, वह यूरोप के विभिन्न राज्यों में विभाजित हो गया है। लिखा है अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। इससे प्रकट है कि रोमी साम्राज्य को शैतान फिर से उठाएगा। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि रोमी साम्राज्य को पुनः उदय करने का प्रयास अनेकों ने किया परंतु सफल नहीं हुए। चर्ल मैग्ने ने और नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी प्रयास किया परंतु कोई भी अभी तक सफल नहीं हुआ। ख्रिस्त विरोधी वह पशु अवश्य सफल होगा। लिखा है विनाश में पड़ेगा। यह प्रभु यीशु के पुनः आगमन पर रोमी साम्राज्य का पतन है। अपने महान सामर्थ्य में रोमी राज्य था और उसका उदय संसार के सब उद्धार रहित मनुष्यों की प्रशंसा का पात्र होगा। सब लोग ख्रिस्त विरोधी चतुर हिंसात्मक विजय की प्रशंसा करेंगे और उसकी पूजा भी करेंगे। परमेश्वर के भक्तों में आत्मा का मन होगा, अतः वे सब बातें समझेंगे, वे मूर्ख नहीं बनेंगे। पहला योना के पत्र 2:20-27 में लिखा है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, तुम उसमें बने रहो। तब कहता है कि वे सात राजा भी हैं। कुछ लोगों ने इसका अर्थ निकाला है कि ये व्यक्तिगत शासक होंगे। इसमें न्यूवेल और गोबेट भी हैं। गोबेट के अनुसार उनकी सूची है, पहला जूलियस कैसर, उसकी हत्या की गई थी। दूसरा तिब्रियास, उसे जहर देकर मारा या जलाया गया था। तीसरा कालिमुला, जिसकी हत्या की गई थी। चौथा क्लाउडियस, जिसे जहर देकर मारा गया था। पांचवा नीरो, जिसने आत्महत्या की थी। और एक अब भी है, यह डोमिशियन है जो योना के समय रोम का राजा था, उसकी हत्या की गई थी। आगे कहता है एक अब तक आया नहीं, यह ख्रिस्त विरोधी के संदर्भ में है। स्कोफील्ड एवं वाल्टर स्कॉट जैसे कुछ टीकाकारों के अनुसार इन सातों को रोम की सरकारों का प्रतीक मानते हैं। ये लोग थे राजा, उपासक, उपशासक, निरंकुश शासक, सेना शासक आदि। तब कहता है एक अब भी है, यह छठवीं प्रकार की सरकार है जिसकी स्थापना जूलियस कैसर ने की थी। इसी सरकार के अग्रिम राजा डोमिशियन ने योहना को काला पानी का दंड दिया था। सातवीं और अंतिम सरकार शैतान की होगी। व्याख्याएं कैसी भी हो, अंत सबका एक ही होगा। इस पुनः स्थापित रोमी साम्राज्य का शासक ख्रिस्त विरोधी ही होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 उसके 11-14 में आगे लिखा है, जो पशु पहले था और अब नहीं है वह आप आठवां है, और उन सातों में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। जो 10 सिंह तूने देखे हुए 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपने अपने सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। मेरे प्रियो, पशु रोमी साम्राज्य का प्रतीक है, परंतु वह आठवां और अंतिम शासक है। यह ख्रिस्त विरोधी होगा। यहां ख्रिस्त विरोधी का उल्लेख किया गया है। वह छोटा सिंह है। उसके 3 सिंह उखाड़ दिए गए थे, अर्थात वह 3 राजाओं को हराकर उभरेगा। देखिए दानियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 8 और 24 पद में कहता है, मैं उन सिंहों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला और उसके बल से उन पहले सिंहों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों में से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। यहां पर हम देखते हैं लिखा है जो पशु पहले था। इसका संदर्भ रोम के प्राचीन इतिहास से है, जब वहां राजाओं का राज्य था। कहता है अब नहीं है। यह राजसी रोम के अंत से संबंधित है, जिसका अंत 3री और 5वीं शताब्दी के मध्य हो गया था। यहां पर लिखा है वह आप आठवां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ। यह पुनः स्थापित रोमी साम्राज्य के ख्रिस्त विरोधी की पहचान करवाता है। यह दानियल नबी की पुस्तक अध्याय 7 का छोटा सिंह है। वह 10 सिंहों में से एक नहीं है। वह इन 7 का 8वां प्रधान है, तथापि वह 7 ही में से है, क्योंकि वह रोम के लिए अंतिम साम्राज्य की स्थापना करता है। यह उलझन अवश्य उत्पन्न करता है, परंतु वही जो वचन स्पष्ट कहता है 10 सिंह, यह वही है जिनका उल्लेख दानियल नबी के पुस्तक में अध्याय 7 उसके पद 7 में किया गया है। ये 10 राजा ख्रिस्त विरोधी के अधीनस्थ राजा होंगे। वे चाहें या ना चाहें उन्हें अपने अधिकार ख्रिस्त विरोधी को देना होगा और वे उसकी कठपुतली हो जाएंगे। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय उसके 15 से 18 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। जो 10 सिंह तूने देखे वे और पशु और उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उनकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो लें तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दें। वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है पानी। पानी से अभिप्राय है ये संसार के विभिन्न मानव समुदाय और भिन्न भिन्न जातियां। यह उपमा पुराने नियम के तुल्य है। आप देख सकते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 8 अध्याय उसके 7 पद में और भजन संहिता उसके 18 में। वेश्या का स्थान प्रकट करता है कि वह कुछ ही समय के लिए मनुष्यों पर राज्य करेगी। लिखा है 10 सिंह। 10 सिंह जैसा पद 12 में भी लिखा है। ये सिंह 10 राजा हैं। ये राजा रोमी साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर राज कर रहे होंगे और अपने अपने राज्य पशु को दे देंगे। इससे रोमी साम्राज्य का गठन होगा और पशु अपने आप को विश्व शासक बना लेगा। मेरे मित्रों, कुछ समय तो यह पशु अर्थात ख्रिस्त विरोधी अपनी महिमा उस वेश्या के साथ बांटेगा, क्योंकि वह उसके लिए काम करेगी, परंतु उसकी महिमा को विभाजित करेगी जिससे वह घृणा करेगा। उसके साथ ये 10 राजा एकजुट होंगे। ख्रिस्त विरोधी इसराइल के साथ अपनी वाचा तोड़ेगा और साथ ही इस विधर्मी कलीसिया से संबंध तोड़ लेगा। उसकी यह प्रतिक्रिया ऐसी खूंखार होगी कि लिखा है कि उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। इस घृणा के कारण विधर्मी कलीसिया नष्ट हो जाएगी, वह जयवंत नहीं होगी क्योंकि वह प्रभु यीशु की शरण में नहीं आई थी, इसलिए उसे पृथ्वी से उठाया नहीं गया था। अंत में ख्रिस्त विरोधी उसका अंत कर देगा। मेरे प्रियो, ख्रिस्त विरोधी और उसके मित्र राजा वास्तव में परमेश्वर के वचन ही को पूरा कर रहे होंगे। वे अशुरों के समान परमेश्वर की इच्छा ही को पूरी कर रहे होंगे, जैसा लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक 10:5-19 में, केसर अगस्तुस ने जनगणना की आज्ञा देकर वही किया जो परमेश्वर चाहता था कि मरियम और यूसुफ बेतलहम को जाएं कि धर्मशास्त्र का लेख पूरा हो। विधर्मी कलीसिया को समाप्त करने के बाद ख्रिस्त विरोधी की आराधना का मार्ग साफ हो जाता है, जैसा झूठा भविष्यद्वक्ता का वाद है। वह स्त्री, जैसा हमने देखा है कि एक धर्म तंत्र है, और मेरे विचार में वह एक नगर भी है, अर्थात रोम नगर। यह भयानक तो है परंतु विधर्मी कलीसिया का अंत है, तथापि परिस्थितियों में सुधार नहीं आता है। वह वास्तव में संसार के इतिहास में धर्म का सबसे अधिक अंधकारपूर्ण समय होगा। ख्रिस्त विरोधी का राज्य और धर्म पृथ्वी का सबसे अधिक अंधकार का समय होगा, परंतु वह अदन की वाटिका के अविश्वास का अवश्यंभावी अंत होगा जब मनुष्य ने परमेश्वर में विश्वास रखने से चूक की थी। इस व्यवहार को एक नया बल मिला जब परमेश्वर विरोधियों ने बाबुल का गुम्मट बनाने का विचार किया था और अंत में इसकी प्राकाष्ठा थी प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाना। यदि आपने अभी भी यीशु को ग्रहण नहीं किया है तो आपके लिए भी समय है कि आप उसे ग्रहण करें ताकि आप उस महाक्लेश से बच जाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
रखना तू कभी भी।
तू